ओम शांति। एक ने कहा या दो तीन ने कहा, क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है दूसरी परम आत्मा, इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्मा भी यहाँ पार्ट बजाने आई हो, दूसरे घरों की बात नहीं है। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आते हैं ये किसी को भी पता नहीं। शिव तो निराकार कोई कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, पूजा साकार की होगी या निराकार की? निराकार बिंदु को तो याद कर सकते, पूजा करने के लिए बड़ा रूप चाहिए। और यहाँ बोला है शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है। पूजा किस रूप में होती है? बिंदु की तो पूजा हो नहीं सकती, तो जरूर उनका बड़ा रूप दिखाया शिवलिंग में। बिंदु भी रखते हैं और शिव का बड़ा रूप जिसमें वो प्रवेश करते हैं, लिंगाकार अर्थात निराकार की यादगार। निराकार का मतलब हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति नहीं रहती, देह और देह की इंद्रियों से परे की स्टेज में रहने वाला, निराकारी स्टेज में रहने वाला, ऐसे निराकारी स्टेज वाले की पूजा होती है। बाकी बिंदु को तो याद किया जाता। शिव जयंती भी मनाते हैं, जयंती अर्थात अंत में जय जयकार होती है। जो पाठ हो गया है वो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, तो जरूर पहले कभी उनकी प्रत्यक्षता रूपी जयंती हुई है, परंतु जानते नहीं है कि वो कब आए, क्या करते गए। आएंगे तो जरूर कुछ करके तो जाएंगे, तब तो सारी दुनिया में इतनी मान्यता और पूजा होगी। जैसे और महात्माएं आए, महापुरुष आए और चले गए, उनकी भी मान्यता है, लेकिन सबसे जास्ती मान्यता तो परमात्मा की है। हर धर्म में परमात्मा की मान्यता है, हर धर्म में उसे पुकारते हैं वो गॉड फादर, धर्म पिताएं भी मानते हैं। तो जरूर कुछ ऐसा करके गया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये किसकी रात्रि मनाते हो, मंदिर में जाकर के पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, इनका परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। संबंध मन सम माना समान, बंध माना बंधन, समान बंधन तो तब बनेगा जब दोनों साकारी हो, एक बिंदु हो और एक साकार हो, बंधन कैसे बनेगा, संबंध कैसे जुटेगा। संबंध तो होते ही है साकार में, साकार सृष्टि पर कि निराकारी दुनिया में संबंध होते हैं, तो पूछना पड़ेगा उस परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है। इसके तन में बोल रहे हैं, ब्रह्मा के तन में बोलने वाला बोल रहा है, तो बाजू में ही बैठा हुआ है, तो उनके क्यों कहा। जरूर जो परमात्मा पार्ट है वो भविष्य में बजने वाला है, इसलिए दूर किया, नहीं तो इनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है ये कहना चाहिए। जरूर कहेंगे उनके साथ सबका संबंध है, सबका मन 500 करोड़ जो भी है वो सबका बाप है, सबको वर्षा दे करके जाता है और जीवन मुक्ति का। इसलिए कहते हैं गॉड फादर है, फादर है तो सबको मिलना चाहिए, जो भी आत्माएं हैं सबका वो बाप है। परम पिता परमात्मा है तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, बल नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती जाती है। तो इन्वेंशन निकालने वाले कोई सारी सृष्टि के बाप नहीं है, वो सब है उतरती कला। कितनी आफतें आती रहती है, मनुष्य को दुख देखना ही, जब अति दुख होता है तो क्राह क्राह करने तब ही बाप आते। इस समय सभी मनुष्य मात्र मुंह से पलीती है, इसलिए इनको विशेष वर्ल्ड कहते, विषय विकारों वाली दुनिया, वहां सत्युग में दुख होता ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ग्लानी लिख दी सत्य के लिए, क्या लिख दिया कि वहां भी राक्षस थे, हिरण्यकश्यप पर राक्षस था, प्रहलाद को दुख दिया, लेकिन शास्त्र लिखने वालों ने जाना नहीं कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद किसी युग में होते, तो सब संगम की बात है। कृष्ण के लिए कहते हैं भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण ने राजयोग सिखाया, पतितों को पावन बनाया, फिर उनके लिए कह देते हैं कि 16108 रानियां थी, तो लौकिक रूप से समझ ले। जैसे दुनिया में मूर्त पलिती राजाओं को रानियां हुई, ऐसे ये समझ लेते हैं कि कृष्ण को भी 16108 रानियां हुई। जैसे दुनिया में भगाते हैं इस स्थूल रूप में, वैसे उन्होंने कृष्ण के लिए भी समझ लिया। अब यहाँ तो है बुद्धि योग की बात, राजयोग की बात, ये बुद्धि को भगाने की बात है, कोई स्थूल शरीर की बात नहीं है। बच्चे तो अब समझ गए ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात भूतों के बस में, ये भूत ही दुश्मन है, दुखी भी कलाएं कम होती कब, भूतों की कलाएं कम कब होती है और बढ़ती कब है। द्वापर के आदि में दुख की कला कम होती है और कलयुग के अंत में दुख की कलाएं बढ़ जाती है। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो, क्योंकि दुख से सभी पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि वहां दुख होता ही नहीं, जिसे किसे कहा जाता है, विकारों को विष कहा जाता है। कार माना कर्म, कृति, विकार माना विकृति, विकर्म विपरीत कर्म। जिस कर्म से सदा काल का सुख हो वो हुआ सुखदायी कर्म, और जिससे सदा काल का दुख हो जाए वो हुआ विकर्म दुखदायी कर्म। तो जो दुखदायी कर्म है वो ही है एक समान दुख। इसकी पैदाइश कहाँ से होती है? द्वापर युग। नाम क्या रख दिया? दोपुर। दोपुर माना दो दो राज्य होते हैं, दो दो मतें होती हैं। तो जहाँ द्वैत पैदा हो जाता है, एकता है तो स्वर्ग है, और द्वैत है अनेकता है तो नरक। एक में आस्था है तो स्वर्ग है, अनेकों में आस्था बच जाती है तो नरक हो जाती है। जैसे स्वर्ग में कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, राधा की दृष्टि सिर्फ कृष्ण में ही डूबेगी, औरों में विविचारी दृष्टि नहीं बनेगी। कर्मेंद्रियां विविचार में आसक्त नहीं होंगी। तो द्वापर युग में ये विषय विकार पैदा होते, पराई स्त्री या पर पुरुष को ही विष कहा जाता है। सतयुग में तो होता नहीं, कैसे वहां बच्चे तब कैसे पैदा होंगे? बोलो, तुम पहले बाप को तो जान लो, उनसे वर्षा तो ले लो, इनसे उस बाप से वर्षा ले लो जो अब विचारी दुनिया की स्थापना करने वाला है। बाप को ही नहीं जाना, तुम तो बाप को ही, भगवान को ही, कृष्ण को ही व्यभिचारी कहते। कृष्ण को तुमने भगवान समझ लिया, बाकी वहाँ जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। सतयुग में व्यभिचारी रस्म रिवाज होती है कि आप व्यभिचारी होते हैं? तुम क्यों ये संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माएं होंगी? जरूर होंगी। यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं ऊपर हैं तब तो आती हैं। परंतु पहले पहले मूल बात है बाप और वर्ष्य को याद करना। इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारी जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का नहीं रहेगा। अर्थात प्रश्न जब तक पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ कि तब तक पूरे ज्ञान चक्षु नहीं खुले, अंधकार में है कुछ। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मनमाना भव, सिर्फ मनमाना भव बनेंगे तो मुक्ति मिलेगी। और जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मत्याजी भव, मेरे लिए यजन करने वाला बन, अर्थात मेरे लिए कर्म करने वाला बन। जो भी कर्म कर मेरे लिए कर, लेकिन मेरे लिए कर्म तब कर सकेगा जब मनमना भव बनेगा। मनमना भव सबको बनना है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसको मनमना भव की स्टेज न प्राप्त करनी है। जब तक परमात्मा के संकल्पों से संकल्प नहीं मिले तब तक कोई परम धाम मुक्ति धाम वापस नहीं जा सकता। तो मुक्ति तो सबको मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्ति सिर्फ उनको मिलेगी जो बाप के कार्य में सहयोग। बाप का काम क्या है?
इस नरक की विचारी दुनिया को खत्म कर अव्यविचारी दुनिया बनाना। इस अव्यविचारी दुनिया के बनाने के कार्य में जो बाप के मददगार बने, मत यादि भव मेरे लिए यजन करने वाले बनेंगे, मेरे लिए कर्म करने वाले बनेंगे, वो जीवन मुक्ति के उपाय। तो राजा ही चाहते हो तो मध्याजी भव, तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। हमको पढ़ाने वाला विचारी है या विचारी है, विचारी है या निर्विचारी है। निर्विकारी पढ़ाने वाला है टीचर, जब निर्विकारी है तो स्टूडेंट भी निर्विकारी बनेंगे। चैतन्य दिव्य में चैतन्य हीरा बैठा है, वो सत्य बाबा भी है, परमात्मा ही शरीर से बोलती। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है, उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि दो आत्माएं हो गई एक शरीर, वो आत्मा आकर के वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का बाढ़ मिल जाता है। जो ऐसी भावना करते हैं उनको प्राप्ति हो जाती है। आगे तो ब्राह्मण में कुछ ताकत थी तो आकर के बातचीत करते थे, अभी तो ब्राह्मणों को बुलाते ही नहीं। ये ज्ञान तो है नहीं कि हम आत्मा हैं, आत्मा वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं है, क्योंकि वह बाबा तो अभोक्ता है, आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। तो एक शरीर में दो आत्मा है, कौन सी अभोक्ता हुई? शिव ज्योति बिंदु वो हुआ भोक्ता, और जिसमें प्रवेश किया वो हुआ भोक्ता भोगी। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, परमात्मा कोई वासना का मुरीद नहीं होता। मुरीद मन मरने वाला, परमात्मा कोई वासना के ऊपर मरने वाला नहीं होता है। कौन होता है? आत्मा है वासना की मुरीद होती है। मैं तो मुरीद नहीं हूं वासना का, मैं तो सिर्फ आता हूं पढ़ाने। मेरा तो ड्रामा में पार्ट है राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने का। तुम्हारे को कहता हूं मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं, अब शिव तो निराकार है, जैसे आत्मा की भी जयंती होती है परमात्मा की भी जयंती होती है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, गर्भपिंड में प्रवेश करती है, तब तो जयंती नहीं होती। जयंती कब होती है? जन्मदिन कब मनाया जाता है? जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है पांचवे छठे महीने में, तब जयंती या जन्मदिन मनाया जाता है, या जब बाहर प्रत्यक्ष होती है तब जन्मदिन मनाया जाता है। प्रत्यक्ष होती है तो जन्मदिन मनाया जाता है। वैसे परमात्मा भी जब इस संसार में प्रत्यक्ष होता है किसी नाम रूप से, परमात्मा पार्थधारी के रूप से, तब उसकी असली जयंती है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। दिव्य ही पतित पावन है जिसका ही आवाहन करते हैं कि आकर के इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। ऐसे नहीं आए और पढ़ाई पढ़ा के चला जाए और हम अपने आप लिबरेट होते रहेंगे, दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त करते रहेंगे। नहीं, वो आकर के हमको दुखों से छुड़ाता नहीं। इस समय पांच विकार सर्वव्यापी, आधा आधा है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते, सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, दूसरे धर्म वालों को भी अपना पार्ट बजाना है, और मैं आता ही हूं। अब तुम बच्चे जानते हो उसे चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। बाप स्वयं भी क्या है, हीरा है। वो हीरा बनाता है किसको, हीरा माना हीरो, जिस चैतन्य डिब्बी में बैठता है उसको भी क्या बनाता है, हीरो बनाता है। काहे से हीरो बनाता है, कौड़ी से हीरा बनाने वाला है। कलयुग के अंत में आकर के कौड़ी जैसी बुद्धि बन जाती है। तो जो कौड़ी से हीरा बनाने वाला है वो ही सत्यचित आनंद है, ज्ञान का सागर। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा कौड़ी मिसल बन जाती है, कौड़ियों को याद करते करते वो हीरे मिसल बनाए देता है। हीरे में और कौड़ी में अंतर क्या है, कौड़ी में अंधेरा ही अंधेरा, अज्ञानता ही अज्ञानता, और हीरे में रोशनी ही रोशनी। कौन सी रोशनी, ज्ञान की रोशनी से भरपूर बनाए देता है। तुम अब जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हो, फिर भूल जाते हो, क्योंकि वो पोप आदि जो है उनको तो चैतन्य शरीर है ही? और बाप को अपना चैतन्य शरीर, अपना चैतन्य शरीर नहीं है, वो पराये शरीर में प्रवेश करता है, पराये राज्य में आता है, पराये देश में आता है। तो वो पोप आदि तो नामी ग्रामी, उनकी किसी भी महिमा होती है। या तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा बैठा हुआ है, कोई जानते ही नहीं है कि वो एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है, ये हमारा सत्य बाबा है, सत्य टीचर है, क्योंकि ये पाठशाला है ना, घर का घर भी है और पाठशाला भी है। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते, चलन से ही सब कुछ पता लग जाता है कि भूलने वाले बच्चे कौन से हैं और स्मृति में रखने वाले बच्चे कौन हैं, किस समय स्मृति में रहता है किस समय भूल जाते हैं, ऐसे से ही पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से ही फा हो जाते हैं, नहीं तो बच्चों को कहना है जो खिलाओ, जहां बिठाओ, जैसे चलाओ, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम तो आपका डर कब नहीं छोड़ेंगे। सपूत बच्चे जो आज्ञाकारी होते हैं वो ऐसे करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कब रोना नहीं, क्या कहा, हम तो पक्के होते हैं तो खुश मौज में रहते, और कोई कोई थोड़ी परीक्षा ली तो बस रोने लग पड़े। तो बच्चे कब नहीं रोना है, तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साधन मिला है, उनके बन करके फिर तुम रोते क्यों हो। इसका मतलब तुमको इतना बड़ा बाप और इतना बड़ा साधन अभी मिला नहीं, और मिला है तो भूल जाते हो, कब भूल जाते हो, कब स्मृति में रहता है। अरे मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं ना, मर थोड़े गया हूं। जैसे तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं, क्या समझते हैं कि 69 के बाद मर गए। मैं तो बैठा हूं ना, कहां इस पराये देश और पराये धन में माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। ऐसे पकड़ती है नाक से पकड़ ले। रोने का कारण क्या बताया? नाक से सूंघा गांधी बहुत करते, ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये कैसे करता है, तो माया भी नाक कान से पकड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल और सी नो इविल। पर चिंतन पतन की जड़, दूसरे को मत देखो। तुम्हारा नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। किससे पूछो? गोप गोपी नाम क्यों दिया? जिन्होंने बुद्ध संबंध जोड़ा, संबंधों को प्रत्यक्ष नहीं होने दिया। कौन सा संबंध गुप्त जोड़ा? कौन सा संबंध होता है जिसमें गुप्त रखने की बात होती है? माँ और बच्चे का संबंध कोई गुप्त में रखा जाता है क्या? साजन सजनी का एक संबंध ऐसा है, एक स्नेह ऐसा है जिसमें पर्दे की जरूरत है, और कोई संबंध नहीं, वो भी भारतीय परंपरा, विदेशी परंपरा में वो भी जरूरत नहीं। दुनिया ऐसे हो गई जैसे बंदर बंदरी है। तो तुम सब हो गोप गोपिया। गोप गोपी अर्थात जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है। इसके साथ परमात्मा बाप के साथ। गोपों ने कैसे जोड़ा? गोपों ने जोड़ा या गोपियों ने जोड़ा? दोनों ने जोड़ा। उस गुप्त संबंध की बात गोप भी जानते हैं और गोपियां भी जानती हैं, और दुनिया नहीं जानती। कितने हैं गोप गोपियां? 16108 आत्माएं हैं जो उन्होंने पवित्रता के विरुद्ध धारण किया। बाकी तो पवित्रता का विरुद्ध धारण ही नहीं करते, ब्राह्मण बनते ही नहीं पक्के। नंबरवार पुरुषार्थ संसार 16108 ही ब्राह्मण बनते। तो जो पवित्रता का विरुद्ध धारण करते हैं, योगी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, वही राजाई प्राप्त करते अथवा राजघराने में आने के हकदार बनते हैं। परमात्मा आता किस लिए? राजाई प्राप्त कराने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। कोई प्रजा योग सिखाने के लिए तो नहीं आता है। परंतु माया भुलाए देती है। बाप पर कुर्बान जावे, बलिहार जावे, वो अंदर याद रहे तो खुशी हो। कुर्बान जाना मन मर जाना, बलि चढ़ जाना। बल परमात्मा बाप के ऊपर कुर्बान हो जाना पड़े, मर जाना पड़े, तो भी दिल में कोई दुख नहीं आए। यहां तो बच्चे छोटी छोटी बातों पर रोने लग पड़ते। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। इंद्रमन इंद्रमाना राजा, वो पानी की बरसात बरसाने वाला इंद्र नहीं, ये तो ज्ञान रत्नों की बरसात बरसाने वाला इंद्र है। ये ज्ञानेंद्र है। इंद्र लठ मिलता है कब? जब बरसात हो जाती है तो इंद्रलठ निकलता है, सात रंगों वाला। तो इंद्रलठ निकलती है ना, उनमें रंग तो बहुत होते हैं, परंतु ये मुख्य तीन दिखाई देती है।
कौन से तीन? तीन रंग को कौन कौन से दिखाई देते हैं? तिरंगा झंडा है। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बना दे। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात सदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला है। तेरे दो सतासी तक का टिकल उनकी पेज पर मध्यान्त। तो ये ज्ञानेन्द्र की निशानी है जो तुम त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। ये इंद्र सभा है, सभा इंद्र की सभा है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं कि कोई भी भिखारी भूत परिति मेरी सभा में न बैठे। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो, ज्ञान इंद्र की परियों को फरमान है कोई भिखारी मनुष्य को यहाँ नहीं लाना, तो क्या होगा? भिखारी होगा तो वो अपने भिखारी वाइब्रेशन फैलाएगा, तो सर्विस होगी या डिस्सर्विस होगी? डिस्सर्विस होगी, वातावरण खराब बनेगा, मधुवन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं। अगर मधुवन का ही वातावरण खराब होगा तो सारे ही ब्राह्मणों का वातावरण खराब हो जाएगा, दुनिया में भी ऐसे ही असर पड़ेगा। तो तुम बच्चों के पास ही साइलेंस का वातावरण हो सकता है, तुम बच्चों के पास ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना। दादा सेंटर्स में या उन गीता पाठशालाओं में भले आते रहे, लेकिन बाप की सभा में सन्मुख ऐसे बच्चों को नहीं लाना। कायदे भी है ना, वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ, कोई ईमानदार अच्छा है तो उनके ऊपर लव जाता है। गांधी जी के लिए सबको लव है, कोई ऐसा है जिसको बेहद के गांधी जी की तरफ लव न हो? उनके जीवन काल में, उनके संपर्क में, संदिग्ध में, संबंध में आने वाली कोई भी आत्मा ऐसी है जो ये कह रही कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया? बाबा के प्रति जो प्यार न रखने वाला हो, सब कहते हैं बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना उतना किसी ने नहीं दिया। काम तो अच्छा किया ना, काम अच्छा किया तो सबको उनके प्रति लग जाता है। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना, हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं है। रावण को सबको भ्रष्टाचारी तो बनाना ही, इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई क्या जाने? पति तो पावन कहते हैं परंतु वो कौन है ये नहीं जानते। उसके नाम के साथ हो उसकी महिमा करेंगे क्या? पति का पावन सीताराम, परंतु वो कौन है सीता और राम ये जानते ही नहीं। अपन को ही भगवान कह रही थी, तो क्या हरेक पति का पावन है? अगर हरेक पतितों को पावन बनाने वाला है फिर अभिविचारी दुनिया पैदा होगी? दुनिया अभिविचारी बनेगी क्या? कुछ भी समझते नहीं। जो अपन को ईश्वर कहते हैं वे सबसे जाति भ्रष्ट है। जिन्होंने सिखाया है वो तो बड़े हो गए, अपनी बैठ पूजा कराते हैं, वो हरणा का चल रहा पार्ट प्रैक्टिकल में चल रहा है, न कर सकते सब कहते हैं
जो अपन को भगवान कहते हैं वास्तव में भगवान का जो प्रैक्टिकल पार्ट हो उसको अपन को भगवान कहने की भी दरकार नहीं पड़ेगी तो सबसे साबित हो जाएगा सच्चाई को सिद्ध करने की जरूरत नहीं जो सिद्ध करते हैं वो कभी प्रसिद्धि नहीं पाएगा तुम तो वही हो जिन्होंने कल पहले भी बाबा को मदद की थी इस बात में अगित दुनिया को पावन बनाने में मदद की थी तो पावन दुनिया बनाने के लिए तुम मददगार हो या बिघन पैदा करने वाले हो मददगार जब मददगार है ऐसों को इस सभा में नहीं जाएंगे जो वाइब्रेशन को विकारी बनाने वाले ये थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया अभी तो तुम जानते हो कि ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बना भारत जो कौड़ी मिसल बन गया है उसको हीरे मिसल बना स्वर्ग में एक ही आज सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है सारी दुनिया में शांति स्थापन करना ये तो परम पिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोई भी इसे सारी दुनिया में शांति स्थापन नहीं कर सकता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भले ही दुनिया में आए लेकिन दुनिया अशांत होती गई है शांत हुई और ये अशांति बढ़ती चली गई वो बाप ही आकर के सबको धन का धनी सब बनाते और जितने भी आते हैं वो सब निर्धन का बनाते बाप समझाते हैं तुम निर्धन के क्यों बने हो क्या कारण हुआ जो तुम निर्धन के बने बाप बताते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ तुम इस समय भूत ईश्वरीय औला तुम्हारी चलन ऊंचे से ऊंची होनी चाहिए तुम्हारे आगे तो देवताएं भी कुछ भी नहीं है देवताएं ऊंचे क्यों नहीं और हम ऊंचे क्यों हमारी जड़ती कला है और उनकी उन देवताओं की उतरती कला है तुम्हारे आगे ये देवताएं भी कुछ भी नहीं है इसकी तरफ इशारा किया है तुम्हारे किससे कहा जाएगा जो सन्मुख बैठे हुए होंगे और देवताएं तो भविष्य में बनने वाले हैं तो सन्मुख रहने वाले बच्चे कौन कौन हुए ब्रह्मा के लिए कभी तुम्हारे नहीं बोला क्या बोला इन्हें के लिए यानी ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं तो सतयुग में जाके देवता बनेंगी नरक से क्या बनेंगी प्रिंस बनेंगी जो देवता बनेंगी वो डायरेक्ट बाप के ईश्वरीय बच्चे नहीं बनते डायरेक्ट बाप ईश्वर से वर्षा नहीं लेते उनकी तो कम कलाएं होती जा रही है और तुम्हारी कला तुम्हारी चढ़ती ही कला ही होती जा रही है इसलिए इस समय तुम्हारे में बड़ी राइटी चाहिए अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है किस समय का गाया हुआ है अंत समय का ये सुख गाया हुआ है अंत समय का क्यों अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का अंत समय का क्यों है जब तक इंद्रियों के सुख में भ्रमे हुए हैं इंद्रियों का सुख लेने की आकांक्षा है परमात्मा बाप से भी समझते हमको इंद्रियों का सुख मिले तब तक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो सकती तो संपन्न स्थिति जैसे जैसे जिनकी जिनकी होती जा रही वो अंत समय में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे इंद्रिय सुख तो अल्पकाल का होता है और अतीन्द्रिय सुख सदाकाल का होता है क्षणभंगुर नहीं होता है। ऐसे ने वो नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछू, ऐसे क्यों नहीं कहा? लक्ष्मी नारायण जब बन जाते हैं तो वो तो उन्होंने प्राप्ति कर ली चतुर्थ में लक्ष्मी नारायण, परंतु गोप गोपियों के लिए ये बात कही है जो गुप्त पुरुषार्थी है लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो संसार में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो तुम गोप गोपियां हो, ईश्वरी औला देवताएं बनते हो, डिग्री कम हो जाती, राजाएं कितना दबदबे से चलते, परंतु वो सब है समोपर। जब लक्ष्मी नारायण ही अंतिम जन्म में पतित है जो फिर आप पावन बनते हैं तो बाकी भी सब पतित ठहरे ना। ये लोग ब्रह्मा का चित्र देख करके बहुत मुझते। तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति कहते हैं और एक विवर त्रिमूर्ति का भी है, कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण का। जो विगर्त मूर्ति का चित्र है उसमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का त्रिमूर्ति से होगा ना भी चित्र रखना चाहिए और शिव का चित्र भी रखना चाहिए, दोनों में क्या अंतर हुआ? जिसमें सिर्फ शिव का चित्र है ज्योति बिंदु शिव वो लक्ष्मी नारायण कौन थे, और जिसमें त्रिमूर्ति शिव का चित्र है वो लक्ष्मी नारायण कौन थे? जिन्होंने तीन मूर्तियों को पहचान लिया मन बुद्धि से कि आखिरी वो तीन मूर्तियां कौन सी हैं, कौन सा उनका शक्ति का स्वरूप है, वो हुए संगम जी लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बड़ी बड़ी आत्मा है, और जिन्होंने तीन मूर्तियों के आखिरी स्वरूप को नहीं पहचान पाया, सिर्फ इतना ही समझा कि ब्रह्मा ही तीन मूर्तियों वाला है। जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं क्या कि ब्रह्मा की तीन मूर्तियां हैं, ऐसे भक्ति मार्ग के साक्षात्कार में भी जो चित्र बनाया उसमें भी क्या रख दिया? ब्रह्मा का ही तीन विचार रख दिया, जो ब्रह्मा का चेहरा वही विष्णु का चेहरा वही शंकर का चेहरा दिखाई दिया, सिर्फ मूर्ति अलग कर दी। तो वास्तव में जिन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा को समझा वो उस स्टेज को नहीं पहुंच पाएंगे जो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण को स्टेज मिलती, वो डायरेक्ट परमात्मा बाप से प्राप्ति करते हैं सृष्टि कल। तो दोनों रखने चाहिए, लक्ष्मी नारायण के चित्र दो प्रकार के रखने चाहिए, पता लगे कि एक को सिर्फ शिव का ही ध्यान रहता है, सिर्फ ज्योतिर्लिंग की ही याद नहीं रहते हैं, और दूसरे त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण का पूरा चित्र पूरा खाका उनकी बुद्धि में रहता है। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो अच्छा हम ये चित्र उठाइए, ये देखो शिव बाबा तो ठीक है ना, निराकार बाप की स्थापना कैसे करें बेगर, साकार तो चाहिए, सच्ची कैसी होती है, निराकार होती है साकार होती है, सच्ची तो साकार होती है, देवताओं की सच्ची भी साकार होगी, ब्राह्मण भी साकार होते हैं, निराकार से क्या निराकारी वर्ष चाहिए, सिर्फ निराकारी वर्ष से काम चलेगा, निराकार से तो निराकारी ज्ञान रत्नों का वर्षा मिल जाए, तो कैसे शरीर में आवे, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना दिखाते, वही ब्रह्मा सिर्फ पालना के निमित्त बनता, कौन सा ब्रह्मा जो स्थापना का कार्य करके दिखाते, साई की स्थापना बस ब्राह्मण की पालना, ये भी ठीक है, जो ब्राह्मणों की अपना के निमित्त बनते हैं ब्रह्मा, वो ब्राह्मणों की पालना भी करते हैं प्रवेश करके। इतने से ही काम नहीं चलता, हमारी है डबल मशीनरी, दूसरों को ब्राह्मण बनाना और ब्राह्मणों को देवता बनाने की मशीनरी। तो ब्रह्मा द्वारा ही ब्रह्मा से ब्राह्मण और ब्रह्मा से ही देवता भी बनते हैं, तो वही ब्रह्मा फिर पालना के निमित्त बनते हैं, जो देवता धर्म की स्थापना करने के निमित्त बनते हैं वही पालना करने के भी निमित्त बनते हैं। दूसरे में चार भुजाएं दिखाई जाती, जैसे महालक्ष्मी में चार भुजाएं दिखाई जाती, तो महालक्ष्मी का चार भुजाओं का रूप सत्युग का हुआ या संगमयुग का हुआ? संगमयुग का रूप है। चार आत्माएं हैं विशेष सहयोगी मददगार परमात्मा के कार्य में 100%। लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा सरस्वती बनते, जरूर ब्रह्मा तन में आवे तब तो ब्रह्मा पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते। ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, तुम भी ब्रह्मा कुमार हो, बताओ प्रजापिता ब्रह्मा बिगड़ शक्ति कैसे रचेंगे? जब शक्ति साकार होती है तो प्रजापिता भी साकार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बंधन में होगा। ये अब नई शक्ति रच रही है, वो तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, परंतु तुम प्रजापिता ब्रह्मा को मानते नहीं, और हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। उनसे ब्राह्मणों से कहो, तुम तथाकथित ब्राह्मणों से कहो, बाबा ने तो मुझे बोला हुआ है कि उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म बतन, तुम्हारा ब्रह्मा बाप सूक्ष्म बतन में, और तुम यहाँ पैदा हो गए। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फिर देवता भी नहीं बन सकते क्या? अभी अगर इस जन्म में तुमको देवता बनना है तो तुमको प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप का बच्चा ब्राह्मण भी बनना पड़े। अगर ब्रह्मा बाप का बच्चा ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो तुम इस जीवन में देवता भी नहीं बन सकते। तुम्हारी पढ़ाई तो ऐसे ही हो गई, जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाने वाला कहे कि हम तुमको डॉक्टर बनाएंगे अगले जन्म में, पढ़ाई तुम यहाँ पढ़ो, ये भी समझते हैं। यहाँ आएंगे वही जिनका सैंपलिंग लगता होगा, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा हरेक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा है, कोई किस चीज का भूखा है, कोई फैशन का भूखा है, बाबा से आकर के पूछो, बाबा हम ठीक ठाक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग है? बाबा भी समझे इनको डर है तब तो पूछते हैं। गांधी को लोगों कितनी मदद की, परंतु उसने खुद नहीं खाया, जिसने मदद की उनके ही काम में सब कुछ लगाई दी, सब बच्चों के लिए करते थे। जो बाबा तो दाता है, वो गांधी तो फिर भी मनुष्य था क्या? वो गांधी तो फिर भी मनुष्य था। मनुष्य कैसे होते हैं? मनुष्य तो सार विकारी होते हैं, मनुष्य स्वर की स्थापना नहीं कर सकते। गांधी भी कहता था क्या कि राम राज्य चाहिए, लेकिन राम राज्य स्थापन नहीं कर सकते, और ही क्या स्थापन हो गया, और ही रावण राज्य स्थापन। ऐसे ही बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में जो गांधी, वो भी कहते थे क्या कि हम स्वर्ग स्थापन करेंगे, स्वर्ग में जाकर के प्रिंस बनूंगा, दिल्ली राजधानी। फिर हुआ क्या, और ही नरक बन गया। ये तो बेहद का बाबा है, ये कोई भारत का बापूजी नहीं है। माना 69 तक सिर्फ भारत में ही सेवा केंद्र खुले। जब 69 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो विदेशों में सेवा केंद्र खुलना शुरू हुए। तो भारत का बापूजी और फिर सारे विश्व का बापूजी, तो प्रैक्टिकल में होगा ना। तो ये बेहद का बाबा है, पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो? कहते हम शिव बाबा को देते हैं 1 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। बाबा तो गरीब निवास, वो 1 जन्मों का वर्षा देते हैं, ये बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के सामने लगाते थे, गांधी जी के सामने लगाते थे, अपने लिए तो उन्होंने भी कुछ नहीं इकट्ठा किया, अपने पास भी जो कुछ था वो भी दे दिया। देने वाला कब इकट्ठा नहीं करता है, उनको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप हमको कहेंगे ऐसे हम काम में लगाएंगे। फिर बाबा ऐसे बच्चों को डायरेक्शन देते रहे, क्या ऐसे बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे किसी के बच्चों को दिमाग के साथ बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। ये है संदेश 12/2/87 5 नंबर के लिए सुनने कर सकते सदा की रीति प्रमाण आप सबकी याद त्याग लेते हुए इस देह और देह की दुनिया के तार अपने सूक्ष्म वतन में पहुंची तो देखा कि बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि देते हुए स्वागत कर रहे थे। जैसे मैं नजदीक जाती रही तो बाबा की दृष्टि सर्व संबंधों का रस देने वाली अनुभव हो रही और ऐसे लग रहा था जैसे मैंपन का भान समाप्त हो उसी प्राप्तियों में समाई हुई। कौन सी प्राप्तियों में? सर्व संबंधों की प्राप्तियों में समाई हुई। थोड़े समय के बाद बाबा बोले बच्ची आज क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा बाबा आज मैं सभी बच्चों की विशेष याद प्यार लेकर के आई। बाबा ने कहा सभा में कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मन से संकल्पों द्वारा बहुत ही संदेश भेजे। मैंने कहा बाबा वो तो हरेक की दिल जाने और आप दिलाराम जाने, मैं तो बीच की संदेश ही। बाबा बोले बच्ची कई बच्चों के दिल में बहुत ही हिम्मत उमंग उत्साह के संकल्प आए रहे, सोचते हैं बस यहाँ से जाकर के यह करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसे उमंग उत्साह के संकल्प वतन में पहुंच रहे। बच्चे यही उमंग उत्साह अपने जीवन के लिए सदा तृप्ति का साधन अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं के लिए भी ये उमंग उत्साह ही एक वरदान का काम करेगा, वरदान बन जाएगा। फिर बाबा ने पूछा अच्छा बच्ची समाचार क्या लाई? मैंने कहा बाबा आपके जो दिए हुए वरदान हैं उन वरदानों को धूमधाम से बांट रहे और लेने वाले ले रहे। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चों का समाचार मैं सुनाता हूँ। ऐसे बोलते ही बाबा ने चारों ओर दृष्टि दी, उन दृष्टि से जगमगाते हुए दीपकों का एक समूह बन गया। बाबा बोले बच्चों ने अनेक आत्माओं के दीपक जगाए और वह जगे हुए दीपक बाप दादा के सामने हैं। उसके बाद बाबा ने एक आध्यात्मिक खेल दिखाया। क्या देखा? एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसमें बहुत से फल लगे हुए और एक ही वृक्ष में वैरायटी प्रकार के फल लगे और वो इतने बढ़िया थे जो उनका रंग रूप देखकर ही दिल खुश हो रही। बाबा उस वृक्ष के नीचे ले गए और संकल्प से सभी बच्चों का सेकंड में आह्वान किया तो बहुत बड़ा संगठन इमर्ज हो गया। बाबा ने कहा सभी इस वृक्ष के सर्किल में खड़े हो जाओ। सभी वृक्ष के चारों ओर सर्किल में खड़े हो गए तो बाबा ने वृक्ष की ओर देखा। बाबा की दृष्टि वृक्ष पर जाते ही वृक्ष की टालियां ऑटोमेटिक नीचे आने लगी। और उसमें लगे हुए फल स्वतः ही टूट टूट करके आने लगे। इसके पास ना बाबा के पास आने लगे। वृक्ष एक था लेकिन फल तीन भागों में बट गए। कौन से तीन भाग? भाग कौन से? वृक्ष में तीन भाग है ना, दाईं ओर के बाईं ओर की डालियां और बीच का तना, जो आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म में पक्के रहने वाले, जो दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते और जो बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। तो वृक्ष एक और तीन भागों में बट गया। किसी के आगे तो ढेर सारे फल आते ही गिर गए, किसी को थोड़ा फल लेने की मेहनत करनी पड़ी, मेहनत के बाद मोहब्बत का फल प्राप्त हुआ और कोई को स्वतः ही मिला। किसी को फल लेने की इच्छा थी लेकिन ले नहीं पाए, तो देख देख करके खुश हो रहे थे कि इनको फल मिला। जो फल लेने की इच्छा रखते भी ले नहीं सकते थे, बाबा उनके सामने आए और कहा, बच्चे तुम ये फल खाना चाहते हो तो सिर्फ बाबा बोलो और फल तुम्हारे मुख में आ जाएगा, बाबा तुम्हारा मददगार है। इसी रीति ये बहुत सुंदर खेल चल रहा है। फिर बाबा ने पूछा, बच्चे इसका रहस्य समझा? किसका? वैरायटी प्रकार के फलों के वृक्ष का रहस्य समझा? वैरायटी प्रकार के फल है ना, अलग अलग धर्मों की अनेक प्रकार की आत्माओं का वृक्ष था। चैतन्य वृक्ष की बात है, ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। तो मैं मुस्कराने लगी, तो बाबा बोले, देखो इस सभा में मेरे तीन प्रकार के बच्चे बैठे हुए। एक है मेरे कनेक्शन में आने वाले बच्चे, कनेक्शन माना संबंध में आने वाले बच्चे, जो प्रैक्टिकल संबंध में आते। प्रैक्टिकल संबंध कैसे बनता है? सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में, साकार शक्ति पर साकार शरीर से ही प्रैक्टिकल कनेक्शन बनता है। साकार इंद्रियों के थ्रू ही प्रैक्टिकल कनेक्शन बनते हैं। तो एक है मेरे कनेक्शन में आने वाले बच्चे और दूसरे हैं मेरे रिलेशन में आने वाले बच्चे। घर वाले ज्यादा कनेक्शन में होते हैं या रिलेटिव ज्यादा कनेक्शन में होते हैं? घर वाले ज्यादा प्रैक्टिकल कनेक्शन में रहते हैं और रिलेशन में तो संबंधी कहे जाते हैं, दूर के संबंधी, नजदीक के संबंधी भी होते हैं। और तीसरे हैं मेरे रियलाइजेशन, मेरा रियलाइजेशन करने वाले बच्चे। बाबा ने कहा, जो कनेक्शन वाले हैं वो बहुत अच्छा है, ऐसे तो कैसे हैं, फल देख देख करके खुश भी होते हैं लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत कम है। अरे ये क्या बात हुई? कनेक्शन में आने वाले हैं लेकिन उसको अपना बुद्धि से स्वीकार कर लें, मन बुद्धि से उसको अपना लें। जिनका मन बुद्धि से अपनाना हो जाएगा उनकी पहचान क्या होगी? कैसे पता चलेगा? कोई मधुबन में रह करके भी बुद्धि बाहर जाती है तो उनको कहेंगे स्वीकार किया? अगर मधुबन में रह करके भी बुद्धि बाहर जाती है तो इसका मतलब उन्होंने बाबा को दिल से अभी स्वीकार नहीं किया है। तो स्वीकार करने की हिम्मत कम है और रिलेशन वाले थोड़ा सा पुरुषार्थ कर उस फल को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु रियलाइजेशन करने वाले बच्चे हैं, बच्चों को हर कर्म में प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने की सिद्धि मिल जाती है। तो रियलाइजेशन करना अच्छा हुआ या सिर्फ कनेक्शन जोड़ना अच्छा हुआ? संबंध तो सब जोड़ लेते हैं लेकिन नंबर किस बात में बनते हैं? जिन्होंने रियलाइज कर लिया और रियलाइज करके उस संबंध को निभाया उनको नंबर मिलते हैं।